जी सर, सवाल ये है कि आपने एक बड़ी अजीब सी बात लिखी है कि हराम चीज़ें जो हैं वो सिर्फ चार हैं। तो मतलब इन चार के अलावा बाकी कुत्ता हो, बिल्ला हो, गधा हो, जो भी चीज़ है वो सारी की सारी हलाल है। ये कैसे?
अगर आप ये बात मेरी तहरीर पढ़ के कर रहे हैं तो बस मैं ताज्जुब भी कर सकता हूँ। मैंने ये लिखा है कि खाने पीने की चीज़ों के मामले में असल उसूल ये है कि तय्यबात हलाल है और तमाम खबाइस हराम है, तमाम खबाइस हराम है। यही अल्फाज हैं मीज़ान में लिखे हुए, खुर नोश का बाबा आप निकालिए। उसके बाद मैंने ये बयान किया है कि कुछ तय्यबात ऐसे थे जिनको तय्यबात लोग ख्याल करके खा सकते थे, उनके बारे में सवाल पैदा हुआ, कुरान मजीद ने उस सवाल का जवाब दिया है। तो ये चार चीज़ें क्या हैं, यानी जो मिन जुमला तय्यबात समझी जा सकती थी उनमें से जो अल्लाह ने हराम करार दी है,
ठीक है,
तो खबाइस की तो बहुत बड़ी फहरिस्त मौजूद है, बल्कि उस खबाइस की फहरिस्त के जो नुमायाँ चीज़ें हैं उसको मैंने ऊपर बयान कर दी है। तो मेरा जो पूरा इस्तदलाल है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि तय्यबात हलाल है और खबाइस हराम है, तो ये इस एतमाद के साथ कहा है कि मुखातबीन जानते हैं। इनमें से सिर्फ चंद चीज़ें थीं जिनके बारे में ये शुबा पैदा हुआ, इसी की मिसाल सूद है, वहाँ भी यही हुआ है, अल्लाह ने अपना फ़ैसला सुना दिया भाई ये बताने के लिए कि चोरी जुर्म है, मिलावट जुर्म है, धोखाधड़ी जुर्म है, किसी इस्तदलाल की ज़रूरत नहीं है, इसको लोग जानते हैं। इसी तरह खबाइस को जानते हैं, कुत्ते बिल्लों के बारे में अमूमी तौर पर लोग जानते थे। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को तय्यबात ख्याल करके खाया जा सकता था इसको बयान किया कुरान ने सूरह अनाम में, वहाँ का अला तायम यतमहू, यानी जिसको कोई खाने वाला खा सकता है, तो ये वो चीज़ें हैं, उनमें से चार चीज़ें हराम करार दी।
अच्छा, ये खबाइस के जैसे आपने कहा कि ये मारूफ चीज़ें थी, बल्कि यही आप कहते हैं कि जी जो फितरी हकायक हैं वो भी दीन का माखज़ हो सकते हैं, वो भी शरीयत का माखज़ हो सकते हैं, तो या मारूफ मुनकर का फ़ैसला वो कर सकते हैं। तो फितरी हकायक मतलब मेरी जो फितरत है या मैं जो समझता हूँ, तो मेरा जो दिल करे उसको मैं मारूफ समझ लूँ, जो मेरा दिल करे उसको मुनकर समझ लूँ।
आपकी इस फितरत और अल्लाह की वही की एक ही वक्त में पता हुई है, यानी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बाद कोई ज़माना फ़तरत नहीं गुज़रा, और वो सिर्फ इंसान नहीं थे, इंसानों में से उनको पैगंबरी भी दी गई, तो इस वजह दोनों चीज़ें साथ जमा हो गई। तो अल्लाह ताला आप पर एतमाद करके आपके मारूफ और मुनकर को भी साथ लेके चल रहे हैं, जहाँ जहाँ गलती का इम्कान है वहाँ इस्लाह भी करते चले जा रहे हैं। यही सारा नबूवत का सिलसिला है, यानी इंसान अंधा और बहरा नहीं है, बल्कि इंसान को अल्लाह ने रोशनी दी है, अकल दी है, इलम दिया है, अल्लाह ताला जहाँ कहीं वो गलती करता है उस गलती की इस्लाह कर देते हैं। ये ताल्लुक़ है बाहमी आपकी फितरत का और आपकी वही का, और ऐसा नहीं है कि फितरत को अलग से माखज़ माना जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि कुरान मजीद फलां चीज़ की तफसील क्यों नहीं कर रहा, यानी मिसाल के तौर पर वो ये कहता है कि लोगों को मारूफ की तलकीन करो और मुनकर से रोको, तफसील क्यों नहीं कर रहा, इसलिए कि लोग जानते हैं। अच्छा, किसी मारूफ और किसी मुनकर के बारे में कोई इश्तबा था उसको अम्बिया ने दूर कर दिया, यही मामला खुरनोश में है, वो कहता है तय्यबात को खाओ, खबाइस से इज्तनाब करो, क्यों कह रहा है, आप पर एतमाद करके कह रहा है कि आप इसको जानते हैं, जहाँ कहीं तय्यबात को तय्यबात समझ लिया गया या खबाइस को खबाइस समझ लिया गया वहाँ तो बात ठीक हो गई, जहाँ इश्तबा पैदा हुआ, इल्तबास पैदा हुआ, वो क्या हदीस है रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया अल हलाल बैन वल हराम बैन व बैनहुमा मुश्तबिहात, दरमियान में कुछ मुश्तबे मकामात होते हैं। ये मुश्तबे मकामात के बारे में दो ही तरीके हैं, एक ये है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल बयान कर दे, जहाँ अल्लाह अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया इश्तबा ख़त्म हो गया, फैसला आ गया, आसमान का फैसला, वही का फैसला। जहाँ अल्लाह अल्लाह के रसूल ने बयान नहीं किया वहाँ ज़ाहिर आप इज्तिहाद करेंगे, यानी इस हदीस की रोशनी में यही करेंगे ना, तो यही मामला है जो मैं बयान
अच्छा,
करता हूं।
आप यानी एक बड़ी अजीब सी बात करते हैं, माशरे का हाल आप देख चुके हैं किस कदर बेहयाई और फहाशी है वो यानी माशरे में फैली हुई है, इस सारे के बावजूद यानी दीन इस्लाम की बात हम आप कहते हैं जी दुपट्टा कोई शरीयत का हिस्सा नहीं है, और जो कुरान मजीद में औरतों से मुसाफा किया जा सकता है, कुरान मजीद जो जलाबीब कहता है उसको आप पता नहीं किस साइड पे फिट करके रखते हैं, उसको भी आप साइड पे कर देते हैं, तो माशरा क्या ऐसा हो जाएगा कि औरतें जो है वो दुपट्टे उतार के फिर रही हों, और ये इस्लामी माशरा होगा या दीनी माशरा है?
अगर आप दुपट्टे के बारे में पूछ रहे हैं तो आप मेरी किताब मकामात में सर की ओढ़नी के उनवान से मेरा मजमून पढ़ लीजिए, उसमें मैंने बयान कर दिया है कि ये एक मुस्तहब चीज़ है, इसका बड़ा अजर होगा, और एक मुसलमान खातून जो खुदा को मानती है उसे चाहिए कि वो दुपट्टा ले कर रखे, तो मैंने तो यही बयान किया। तो इसलिए इस मामले में कहाँ से मेरी राय आपने पढ़ी है जहाँ मैंने कहा है कि ख्वातीन दुपट्टे उतार दें, मैंने
मतलब
सर की ओढ़नी
के
उनवान से ये लिखा है बाकायदा, मेरा वो मजमून मौजूद है आज भी मेरी किताब मकामात में है, और मैं इसी को इस्लामी तहजीब का अच्छा इजहार समझता हूँ, बाकी यह है कि उसके इस्तेहबाब का कायल हूँ, اس کے وجوب کا قائل نہیں ہوں. اور یہ بحثیں اس سے پہلے بھی علماء فقہا کے درمیان ہوتی ہیں. کتنی باتیں ہیں میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں جن کو احناف واجب مانتے ہیں, دوسرے علماء نہیں مانتے.
یہ جلباب جو قرآن مجید نے فرمایا یہ کیا ہے؟
اس کے بارے میں میں نے یہ بتا دیا ہے کہ در حقیقت وہ ایک وقتی تدبیر ہے جو بتائی گئی ہے. دیکھیے قرآن مجید میں جو احکام ہم کو دیے گئے ہیں وہ تین نوعیت کے ہیں. خدا کی ابدی شریعت اس میں بیان ہوئی ہے جو اس وقت بھی تھی, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گی. سد ذریعہ کے احکام بیان ہوئے ہیں. سد ذریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز اصلاً ممنوع ہے اس تک پہنچنے کے ذرائع بند کیے جا رہے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ حالات سے متعلق ہوتے ہیں. حالت تبدیل ہو جاتی ہے تو سد ذریعہ کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. وقتی تدابیر ہیں, بہت سی وقتی تدابیر قرآن مجید میں بیان ہوئی. مثلاً یہ وقتی تدبیر بیان ہوئی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ پاس آ کے لوگ تخلیہ میں بات کرنا چاہتے تھے. یہ بتایا گیا کہ آپ پہلے کچھ خدا کی راہ میں صدقہ کر کے آئیں گے, اس کے بعد تبدیل کر دیا گیا اس کو. تو وقتی تدابیر کے ذیل کی چیز یہ
تو اس کو کب تبدیل کیا گیا؟
بتا دیا قرآن مجید نے کہ ہے ہی وقتی تدبیر, یعنی اس کو پڑھ لینا. یہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک چیز کی پہلے نوعیت طے کریں گے آپ کہ کیا چیز ابدی شریعت ہے, کیا چیز وقتی تدبیر ہے, کیا چیز سد ذریعہ ہے. یہ اگر آپ کبھی بحث کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا.
کافی فیاض واقعہ ہوئے ہیں.
آپ کو میں بتاؤں گا,
چیز کو مخصوص کر دیتے ہیں اور ادھر سے کوئی راستہ نکال لیتے ہیں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ نیت کے بارے میں تو آپ کوئی بھی تبصرہ کر سکتے ہیں. میں تو کسی کی نیت کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا.
رائے بتا رہی ہے کہ آپ کافی فیاض ہیں, ہر چیز کو آپ مخصوص قرار دیتے ہیں. اس وقت پھر دین کیا رہ گیا؟
میرا پروردگار بہت فیاض ہے, وہ انسانوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتا ہے. وہ بھی اسی فیاضی کے ساتھ دیکھتا ہے. اس کو میرے پیغمبر نے بھی بیان کیا.
اسی فیاضی میں آپ نے وہ مصافحہ بھی ڈال دیا, خواتین کے ساتھ مصافحہ بھی کر سکتے ہیں اور اختلاط بھی.
کل کو آپ اس سے آگے بھی اس لمٹ کو بھی کراس کر کے کسی اور چیز تک کہہ دیں گے کہ مساج بھی ٹھیک ہے اگر شہوت نہ ہو. یہ تو پھر کوئی حد نہیں ہے اس میں. اگر آپ اس طرح ریلیکسیشن دیں گے پھر تو حیا ہمارے معاشرے سے نکل جائے گی.
دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا چیز رکھنی ہے کیا نہیں رکھنی, یہ فیصلہ تو اللہ کا رسول کرے گا. اللہ کے رسول نے اگر کسی چیز کے بارے میں ہم کو مطلق کوئی حکم دے دیا ہے تو مطلق حکم ہوگا. اگر کسی چیز میں ترجیح بیان کی ہے تو ترجیح چیز ہوگی. اگر کسی چیز میں اپنی پسند ناپسند بیان کی ہے تو اپنی ناپسند ہوگی. تو میں نے رسمی مصافحے کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ کوئی حرمت کی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں کی ایک ثقافت ہے, تہذیب ہے, اور ہمارے دین نے ہم کو یہ مزاج دیا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان فاصلہ رہے, اور یہ فاصلہ رکھنا چاہیے ہمیں. اس فاصلے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں بدکاری ایک بہت بڑا جرم ہے. اس کی طرف بڑھنے کے سارے راستے داخل سے بھی بند ہونے چاہیے, خارج سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ انہیں بند کریں. یہ ساری بات میں نے بیان کی ہے. اس ساری بات کو بیان کرنے کے بعد میں نے یہ گزارش کی ہے کہ ایک چیز ہے رسمی مصافحہ اور ایک چیز ہے وہ لمس اور مس جس کو دین میں حرام قرار دیا گیا ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. وہ فرق سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہ بتایا کہ رسمی مصافحے پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ پرانی فقہ پڑھتے ہیں اور اس میں شوافے کے, اس میں احناف کے, اس میں حنابلہ کے اختلافات پڑھتے ہیں تو ان پر بھی یہی تبصرہ کرتے ہیں. یعنی کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو ایک امام مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا.
آپ یہ دیکھیں وہ درجہ کہاں, وہ حضرات کہاں اور آپ.
تو اگر درجے کے تقابل پہ بات کرنی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ میں تو کسی اپنے درجے کا ادعا نہیں رکھتا, طالب علم ہوں اور طالب علمانہ گفتگو کروں گا.
آخری کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے کبھی بھی مسلمانوں کے بارے میں کوئی ہمدردی کا رویہ نظر نہیں آتا. یعنی مسلمانوں کی علاقتیں کشمیر میں ہوں, فلسطین میں ہوں, افغانستان میں اتنا بڑا ظلم ہو جائے, برما کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو, کبھی آپ کی آواز نہیں آتی. کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ کا طبقہ نہیں, یعنی آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ نظر نہیں آتے کہ جی وہ لوگ اس موومنٹ کے لیے کھڑے ہوں, آواز کم از کم اٹھائیں, کم از کم مذمت کر دیں. کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن اس کے مقابلے میں کسی مسلمان پر شبہ ہو جائے کہ جی اس نے دہشت گردی کر دی یا اس نے کوئی غلط, یعنی یہ ثابت نہیں ہے چیزیں, لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے غلط کیا ہے, مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا, دہشت گردی یہ ہے فلاں ہے.
اس میں بھی دو چیزوں کو ملا دیا گیا ہے. مسلمانوں پر کوئی ظلم ہوگا تو اس میں مجھ پر ظلم ہے. میرے بھائی ہیں وہ, میں ان کا درد کیوں محسوس نہیں کروں گا؟ لیکن میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں, نہ میں کوئی صحافی ہوں کہ روز بیانات دیتا رہوں. اگر مسلمانوں کے بارے میں کوئی بات مجھ سے پوچھی گئی ہے تو آپ ان مقامات کو نکالیے. ان میں میں نے اپنے درد کا اظہار بھی کیا ہے, محبت کا اظہار بھی کیا ہے, اور وہ آپ سے پوچھ کر نہیں کیا, اسے کہنے پر نہیں کیا. وہ میرا درد ہے, میری محبت ہے. مسلمان جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو پھر مجھے انہیں بتانا چاہیے. مجھے دین نے یہی سکھایا ہے کہ سچائی کی بات کرو خواہ تمہیں اپنے گھر والوں کے خلاف کرنی پڑے. مسلمان اس وقت جو کچھ اپنے ساتھ کر رہے ہیں وہ دین کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں, اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. उसमें मैंने उनको तवज्जो दिलाई है कि इसके नतायज तुम्हारे हक़ में ख़तरनाक निकलेंगे। वो आलमी सतह पर निकल आए, जो कुछ मैं कह रहा था वो आखिरी दर्जे में हो गया। जब मैं कह रहा था कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, फिर आप सब लोग ज़रबे अज़ब पर फ़ख्र फरमा रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि गलती कहाँ हो रही है, आप तो फिर उनको मारने के लिए निकल खड़े हुए। तो असल में ये सारी चीज़ें जितनी हैं उनको उनकी सही जगह पर रख के देखें। मुझे ये तालीम भी अल्लाह की किताब ने दी है कि जब कभी आपकी कौम कोई गलती करती है खुदा के हवाले से, खुदा के दीन के हवाले से, तो अल्लाह गिरफ्त करता है, उस मौके के ऊपर उन्हीं को तंबीह करनी चाहिए। यही एतराज़ अल्लाह ताला के बारे में भी हो जाएगा, इसलिए कि उन्होंने तो बनी इसराइल के साथ यही मामला किया है, वो उनकी मुंतखब कौम है। लेकिन वो हर जगह ये बताते हैं कि देखो बनी इसराइल के लोगों, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। मैं भी मुसलमानों से बहुत मोहब्बत के साथ अर्ज़ करता हूँ कि तुम पर इस वक्त जो इतबार है, जो जवाल जिससे तुम आशना हो गए हो, जो तुम्हारी सूरत हाल बन गई है, इसमें तुम्हारे अपने आमाल का दखल है। और तुम कौन हो? मैं भी वही हूँ। ये हमारे आमाल का दखल है, इसलिए खुदा के लिए खुदा की हिदायत को दोबारा समझो, अल्लाह की किताब को मज़बूत पकड़ो और उसके करीब आओ। इससे पहले भी यही रहा है, आप देखें इकबाल ने शिकवा और जवाब शिकवा लिखा। जवाब शिकवा क्या है? वो मुसलमानों की फ़र्द करारदाद जुर्म है, मुसलमानों के तमाम हमदर्द यही कहते रहे हैं। आप शाह वलीउल्लाह की तफ़ीमात को ज़रा देखिए, पढ़िए, उन्होंने अपने ज़माने में मुसलमानों के अहवाल पर क्या तबसरे किए हैं। तो मैं तो कोई सहाफ़ी नहीं हूँ, कोई लीडर नहीं हूँ कि रोज़ बयान देता हूँ। मुझसे आप सवाल करेंगे तो जो मेरे नज़दीक सही बात होगी वो मैं अल्लाह की किताब की रोशनी में बयान कर देता
हूँ। सर आखिर में मैं भी एक सवाल करना चाहूँगा, फ़िक्री नोयत से हटके अमली नोयत का सवाल है। फ़िक्र से हटके अगर अमली तौर पर देखें तो सर आपकी बातें सुनकर कोई दिल में खुदा का खौफ, खशियत इलाही पैदा नहीं होती। तसव्वुफ जिसको आप कोसते हैं वो मेरे दिल के अंदर खुदा का खौफ पैदा करता है, मुझे अल्लाह से जोड़ता है। आपकी बातें ऐसे लगता है जैसे कोई 2+2=4 की तरह कोई मेंटल मैथमेटिकल एक्सरसाइज है, कलामी खुश मतलब कोई मीनिंगफुल नहीं है, यानी मुझे तस्कीन हासिल नहीं होती, इसकी क्या?
मेरे नज़दीक तो आपको तस्कीन अल्लाह की किताब से हासिल होनी चाहिए, ना ये मेरा मनसब है ना किसी सूफ़ी का मनसब है। असल में ये जो खशियत है, ये खुदा का खौफ है, खुदा से सच्चा ताल्लुक़ है, इसका मंबा ही अल्लाह की किताब है। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको खुदा की किताब पहुँचा दूँ, खुदा की किताब की शरह वज़ाहत कर दूँ। मैं तो दावत के लिए भी खुदा की किताब ही लोगों के सामने पेश करने की बात करता हूँ। तो ये काम मुझे हैरत हुई कि अल्लाह की किताब आपको नहीं करती, अहले तसव्वुफ़ करते हैं। मेरी गुजारिश यह है कि खुदा की किताब को पढ़िए।
ख्याल था कि आखिरी सवाल होगा, लेकिन दो सवाल बड़े अहम हैं, मैं मुख्तसरन चाहूँगा कि आप उस पर कमेंट करें। यानी बड़ी तकलीफ दे बात है कि आप अमरीका में बैठ के, वहाँ बैठ के ये कहते हैं जी कि मदारस दहशतगर्दी की बुनियाद है। तो एक तो वो ख़ुद मुसलमानों का दुश्मन, मदारस का दुश्मन, फिर आप वहाँ बैठ के उनके हक़ में और वहाँ बैठ के उनकी जगह बैठ के हमारे खिलाफ ये बयान कर रहे हैं। मैं मदरसे से पढ़ा हूँ, ये मदरसे से पढ़े हैं, हमारे कितने दोस्त मदरसे से पढ़े, हमने कभी कोई दहशतगर्दी नहीं की, कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं किया कि जिससे मुसलमानों को या गैर मुसलमों को जो हमारे से मुहारिब नहीं है उनको नुकसान होता हो। तो ये आप यानी दो चीज़ें आप कर रहे हैं, एक तो हमारी मदारिस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं दहशतगर्दी का, दूसरा फिर वहाँ पर आप वहाँ पर बैठ कर तो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। और भी आपकी बाकी कुछ तहरीरों से हमारा ये तासुर बना कि जैसे आप, जैसा वो कहते हैं इस्तेमार कहता है वैसा आप जो है वो बयान कर देते हैं, वैसा आप अपना मौका बना लेते हैं।
मैंने तो यहाँ पर भी, अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, हर जगह इसकी नफ़ी की है। ये बल्कि बताया है कि ये आपका गलत ख्याल है कि मदारिस के लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं। हो सकता है कोई एक मदरसा को, दो मदरसे,
ये फिक्र मदरसों में पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है,
पूरी पूरी बात यही बयान है। मैंने ये बताया है कि हमारे मदारिस में, हमारी मजहबी तहरीकों में जो मजहबी फ़िक्र पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर वो चीज़ मौजूद है कि जिस वक्त एक आदमी उसको समझ लेता है तो उसके यहाँ ये रुझान पैदा हो जाते हैं। ये कहा है मैंने, इसलिए ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। जो मैंने आपके फ़िक्र के ऊपर बात की है वो, आपके पास वक्त है तो मैं एक एक चीज़ को बयान कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप सुनना चाहें,
पढ़ा जवाहरी किसी मदरसे से नहीं पढ़ा हुआ, जितने बड़े बड़े हैं वो किसी मदरसे से नहीं पढ़े हुए, कोई इक्का दुक्का अगर कोई मुस्तस्नियात हैं भी तो आप उसकी बुनियाद पर उसको जनरलाइज ना करें कि भी मदरसे की फिक्र पढ़ के ऐसा था। मैं हूँ, बिलाल है, सैकड़ों लोग हैं।
ये बताइए मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में दीन पढ़ाया जाता है ना। यानी अगर कोई आदमी जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसका दीन की तरफ रुझान होता है, दीन कहाँ से सीखेगा? या वो मदरसे में जो दीन पढ़ाया जाता है वो सीखेगा, या मदरसे के अंदर से जो पढ़े हुए लोग हैं वो जो कुछ दीन बयान कर रहे हैं उसको सीखेगा? वही आदमी मस्जिद में बैठा हुआ है, वही वहाँ वाज कर रहा है। अच्छा, या जो मजहबी तहरीकें हैं उन्होंने जो फ़िक्र पैदा किया हुआ है उसके ज़रिए से दीन को सीखेगा। तो दीन जो आप लोग सिखा रहे हैं ये तबसरा मैंने उस पर किया है और दलाइल के साथ उसको बयान कर दिया है, उस पर अगर आप अलग से कोई नशस्त करना चाहें तो मैं बड़ी तफसील से ये अर्ज़ करूँगा कि वो क्या फ़िक्र है। बाकी रही ये बात कि मैंने ये कहा है कि वो दहशतगर्दी के मराकज़ हैं या वहाँ पर लोगों को दहशतगर्दी सिखाई जाती है, ऐसी बात मैंने कभी नहीं कही, ना अमेरिका में, ना बरतानिया में, ना पाकिस्तान में। ये बात मैंने कही है, बरमला कहता हूँ, और ये बात दलाइल से मैं वाजे कर सकता हूँ कि जो मजहबी फ़िक्र इस वक्त ख्वा वो मदरसों में हो, ख्वा वो तहरीकों में हो, ख्वा वो मुसलमानों के लिटरेचर में हो, उस मजहबी फ़िक्र की बुनियाद के ऊपर ये चीज़ पैदा हो रही है। ये रिलेशन एक वाकई रिलेशन है और इसको मैं बता दूँगा। यहाँ भी वही सूरत हाल है, मैं किसी फ़र्द पर कोई बात नहीं कर रहा, मैं फ़िक्र पर बात कर रहा हूँ। वो फ़िक्र की गलती आप वाजे कर दें, यानी जो कुछ मैं कह रहा हूँ आप ये बता दें कि ये सही नहीं है। ठीक,
इसका दूसरा ऐसा था कि आप वहाँ बैठ कर बात कर रहे हैं और ऐसा बाकी भी आपकी तहरीरों से भी और कुछ वीडियो से क्लिप से भी अंदाज़ा होता है कि जैसे आप वाकई इस्तेमार की सपोर्ट में यहाँ काम कर रहे हैं और उसके लिए एक मजहबी बयानिया तैयार कर रहे हैं कि जैसा वो चाहते हैं वैसा उस वक्त मजहब हो जाए, चाहे वो 20 साल पहले हो चाहे वो आज 20 साल बाद हो।
देखिए बात यह है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैं दीन का एक तालिब इल्म हूँ। जब मैं दीन को समझ लेता हूँ दलाइल के साथ बयान कर देता हूँ, वो बात जो मैं बयान कर रहा हूँ वो अगर इबलीस ने कही है तब भी ठीक है, वो अगर किसी गुमराह तरीन आदमी ने कही है तब भी ठीक है। इसलिए कि हर आदमी हर वक्त झूठ नहीं बोल रहा होता, हर वक्त फितना नहीं पैदा कर रहा होता। मिसाल के तौर पर मैं अगर जाऊँ किसी गिरजे में और वहाँ कोई पादरी ये कहे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो जुटला दूँगा उसको। इस वजह से यहाँ इस्तेमार अदम इस्तेमार का सवाल नहीं है। आप लोगों को भी अपने अंदर ये ज़ौक पैदा करना चाहिए कि जो बात कही जा रही है आप उसके ऊपर तवज्जो मुर्तकज़ करें, उसकी गलती वाज़े करें। जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात यह है कि हमारा इस वक्त जो मजहबी फ़िक्र है उसके अंदर वो बुनियादें मौजूद हैं। वो बुनियादें अगर मौजूद नहीं हैं तो भाई उसकी नफ़ी कर दीजिए, और अगर वो मौजूद हैं जैसे कि हैं तो फिर आप असल में उसका और जो कुछ हो रहा है रिलेशन का इनकार किस बुनियाद पर करेंगे। आपको मानना पड़ेगा कि अगर ये बात मौजूद है, या तो कहिए मौजूद नहीं, अगर वो बात मौजूद है तो फिर उसको पढ़ने के बाद कोई आदमी अगर उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाता है तो मैं तो समझता हूँ कि वो ज़्यादा मुखलिस है कि आप बात वो कह रहे हैं अमल वो कर रहा है उसके ऊपर। यही बात मैंने हमेशा कही है। मैंने जो लेक्चर्स दिए हैं काउंटर नैरेटिव जो जवाबी बयानिया के लिहाज से, उसमें भी वो सारे निकात बयान कर दिए हैं। यहाँ भी मेरी सारी बहस और गुफ्तगू उस फ़िक्र पर है। मैं अफराद पर, इदारों पर ना कोई तोहमत मान रहा हूँ, ना कोई एतराज़ कर रहा हूँ, ना मुझे किसी इस्तेमार से दिलचस्पी है, ना किसी मगरब से दिलचस्पी है, ना मशरक़ से दिलचस्पी है, मुझे सही बात से दिलचस्पी है। और वो सही बात जब अल्लाह की किताब से और अल्लाह के पैगंबर से मुझ पर वाज़े हो जाती है तो फिर मैं इसको अपनी सादत समझता हूँ कि मैं बयान कर रहा हूँ और आप मुझ पर तोहमत लगाएंगे, तो ये तोहमत भी मेरे लिए सादत ही।
बहुत शुक्रिया। हम बहुत सारी चीज़ों पे गुफ्तगू का, यानी आइंदा भी हम आपसे कहेंगे कि आप हमें मौका दें। कुछ चीज़ें तश्ना रह गई, कुछ चीज़ों पे वाकई बेहतरीन जवाब आया। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह। उम्मीद है कि आप आइंदा में वक्त देंगे इंशाल्लाह।
आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना नुक्ता नज़र बयान किया। खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे की बात को जैसे कि वो है उस तरह समझें।
आमीन, जज़ाकुमुल्लाह।